ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय सचिन भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, एक हाथ की ताली से हम स्वागत करेंगे। आप राजयोग के गुप्त और सच्चे साधक हैं, आपको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके प्रति ये हमारा प्यार और सम्मान है, इसलिए मैं डॉक्टर सचिन के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगी आपके परिचय के रूप में। डॉक्टर सचिन, नाम से ही पता है कि आप डॉक्टर हैं। आपकी वास्तविक पहचान केवल एक सफल डॉक्टर के रूप में नहीं है, आपकी पहचान एक ऐसे सफल राजयोगी के रूप में है जो शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों और आत्मिक शक्ति से हजारों हृदय को स्पर्श करते हैं। सन 2003 में माउंट आबू में राजयोग के संपर्क में आने के बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय ज्ञान और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपकी वाणी में गहराई है, विचारों में स्थिरता है, व्यक्तित्व में सहजता और बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान की स्पष्टता है। भाई जी उन तपस्वी आत्माओं में से एक हैं जिनके मुखारविंद से निकले शब्द मन को शांति और आत्मा को परमात्म मिलन की सुखद अनुभूति कराते हैं। आपके दिव्य उद्बोधनों ने समूचे ब्राह्मण परिवार में आध्यात्मिक क्रांति लाई है। आपने अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट से सुषुप्त ब्राह्मण आत्माओं में मुरली अध्ययन के प्रति नव चेतना का संचार किया है। 2 से 5 अमृत वेला तपस्या के प्रति आपने सबके भीतर रुचि जगाई है। अपक आहार, फलाहार, रसाहार, जिस भी विषय को आप छू देते हैं उसके प्रति लोगों की रुचि को जागृत कर देते हैं। अभी हाल में ही आपने कुमार करें कमाल भट्टी आयोजित कर अनेक कुमारों की पवित्रता एवं ब्रह्मचर्य की नींव को मजबूत किया है। आपके पास ज्ञान का अजस्त्र भंडार है, उसी भंडार को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे भीतर परमात्मा प्रेम का निर्झर बहाने के लिए। ओम शांति,
ओम शांति। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा एक दूसरा व्यक्ति एक घोड़े को अपने घर में लेके जा रहा है और घोड़ा मना कर रहा था। घोड़ों को कैद पसंद नहीं, मनुष्य को है। उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो पहला व्यक्ति पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? वो दूसरा व्यक्ति कहता है, बहुत उपकार होंगे आपके, मुझे इस घोड़े को घर के भीतर लेके जाना है किसी काम के लिए। और दोनों मिलके घोड़े को घर के भीतर ले जाते हैं। जब वो राहगीर जाने लगता है तो देखता है घर का मालिक घोड़े को सीढ़ियों से पहली मंजिल पर लेके जा रहा है। उसे आश्चर्य लगता है, ये क्या है? परंतु दूसरों की बातें हैं, हमें क्या। फिर भी वो पूछता है, क्या मैं आपकी और मदद करूं? और दूसरा व्यक्ति कहता है, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे इस घोड़े को ऊपर पहली मंजिल तक पहुंचाने में मदद करो। तो दोनों मिलके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत करके उस घोड़े को पहली मंजिल पर पहुंचाते हैं। उसके मन में आता है, राहगीर के मन में, कि पूछूं ये क्या है। और तब तो और एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है। वो घोड़े का मालिक कहता है, आपने मेरी इतनी मदद की, क्या मुझे घोड़े को बाथरूम के अंदर लेके जाने में मदद करोगे? उसके मन में प्रश्न आता है, ये क्या है, घोड़े को बाथरूम के अंदर? फिर सोचता है, मुझे क्या लेना देना, इसका घोड़ा है, मैं मदद करूंगा और निकल जाऊंगा, जो इसको करना है करे। और दोनों मिलके घोड़े को बाथरूम के अंदर घुसाते हैं। इतना ही नहीं, वहां जो बाथ टब होता है, उस घोड़े को उस बाथ टब में खड़ा करते हैं और घोड़े का मालिक अपने जेब से पिस्तौल निकालता है और घोड़े को मार देता है। वो राहगीर पूछता है, ये क्या है, ये कैसा पागलपन है? अब तक तो वो रुका हुआ था, पर अब नहीं। घोड़े का मालिक कहता है, मेरा एक मित्र है जिसको एक बीमारी लग गई है ज्ञान की। कौन सी बीमारी? ज्ञान की बीमारी। किसी भी विषय पर चर्चा करो, वो कहता है, मुझे पहले से ही पता है, आई नो की बीमारी है उसे। कुछ भी पूछो, वो मंद मंद मुस्कुराता है, जैसे उसे पता है अब इसका उत्तर क्या है। संसार का किसी भी विषय को वो जानता है, या फिर ऐसा जतलाता है कि उसे पता है। और वो आज खाने पे मेरे घर में आने वाला, वो राहगीर पूछता है, वो सब ठीक है, पर उससे घोड़े को मारने का क्या संबंध? वो व्यक्ति कहता है, जब वो मेरे यहां आएगा, खाना खाएगा मित्र, और हाथ धोने जब बाथरूम में जाएगा, तो घबरा कर बाहर आएगा, आश्चर्य के साथ, ये क्या है, एक मरा हुआ घोड़ा बाथ टब में, ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा होगा ना कभी सुना। और तब वो मुझे पूछेगा और तब मैं अपना बदला पूरा करूंगा कि मुझे पता है। हमेशा वो कहता है कि मुझे पता है, आई नो आई नो आई नो। इसलिए मनुष्य चेतना की सबसे बड़ी बीमारी है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। और इसीलिए ज्ञान का दुश्मन, ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का घमंड और ज्ञान का भ्रम। मैंने जाना है का भ्रम, जो जाना है वो शब्द है, जो जाना है वो सूचनाएं हैं, और जितना एक व्यक्ति जानता है नॉलेजेबल हो जाता है, पर उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है, क्योंकि लर्निंग के लिए क्राइटेरिया है खाली, जो रिक्त है वो जान सकता है। जिसने पहले ही ये मान लिया है कि मुझे तो सब पता है, अगर सब पता है तो ये बेचैनी क्यों, अगर सब पता है तो ये दुविधा क्यों, अगर सब पता है तो मन में हलचल क्यों। जागृति का जन्म रिक्तता में होता है। जब तक यहां है सभी सोचो मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे एक निरागस छोटा बालक, अभी मैं जानूंगा, अभी मुझे पता करना है। एक अवसर जीवन में आया है रुकने का, स्थिर होने का, स्वयं को देखने का और अपने ही जीवन को देखने का कि मैं कहां भागे जा रहा हूं। रुक कर, ठहर कर, उस नितांत पॉज में खुद से बातें करना है। इसलिए भट्टी का पहला नियम, आपस में बातचीत ना हो तो बहुत अच्छा। अगर बातचीत करनी है तो स्वयं से, अगर बातचीत करनी है दूसरों से तो साधना संबंधित, तपस्या संबंधित। अगर यहां आकर भी वही संसार का चिंतन, वही लौकिक का चिंतन, वही उस दुनिया का चिंतन जिस दुनिया से हम यहां आए हैं, तो यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। यहां आए हैं तो एक एक क्षण, एक एक पल जागृति का पल। इसलिए दूसरा नियम, नजर नीचे, आंखों को जितना भटकाएंगे, जितना स्टिमुलस देंगे उतना विचार चलते रहेंगे। अगर विचार को चलाना ही है तो केवल तीन तलों पर चले, एक सत्यम, एक शिवम और एक सुंदरम। जो जो सत्य है उसका चिंतन, जो जो जीवन में शुभ है उसका चिंतन, और जो जो सुंदर है। मार्ग तीन है, इसलिए तीन प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं। कोई सुंदरम के मार्ग से जाता है फिर वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ अत्यंत कुरूप है। फिर वो झूठ देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि असत्य, क्योंकि विकार अत्यंत काले हैं। जिसने शुभ का मार्ग चुना है उसकी चेतना निरंतर शुभ के इर्द गिर्द ही घूमेगी, और जिसने सत्य का, वो केवल सत्य का चिंतन करेगा। और परमात्मा महावाक्य के अतिरिक्त इस संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। इसलिए अगले तीन दिन अपनी बुद्धि को, अपने चिंतन को, अपने विचारों को, अपने भावों को केवल सत्योन्मुख, शिवोन्मुख और सुंदरम मुख कर देना है। जो जो सुंदर है, जो जो पावन है, जहां जहां शुचिता है, केवल उसका चिंतन। योग यात्रा है, सुबह भी कहा है मुरली में, तो वो यात्रा 5 बजे खत्म ना हो, सुबह दिन भर चालू रहे, बार 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 बार। इसलिए नजर को कहाँ रखना है, नीचे, चलते फिरते इसको उसको जितना हम देखेंगे उतना मन उन पर विचार करेगा। तीसरा, जितना हो सके अपने आप को कैद कर दो, यहां से बाहर नहीं निकलना है कहीं। और चौथा, मोबाइल को बंद। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पर्श से मुक्त, स्पर्श से। अगर वास्तव में गहरी साधना करनी है तो वास्तव में यहां से कुछ लेके जाना है। गंभीर साधक जो है उनको ये करना होगा, और जिनको केवल यहां आकर घूमना है, फिरना है, खाना है, सौगातें लेनी है और चले जाना है और काली क्लासेस सुनना है, वो केवल एक कनरस, वाणीरस, बुद्धिरस, बुद्धिविलास, एक अहंकार रस उतना ही लेकर जाएंगे। इसलिए एक एक मूवमेंट, एक एक पल को तपस्या में कन्वर्ट कर देना है, और उसके लिए एक झरना, एक निर्झर, एक प्रपात, एक वाटरफॉल, एक कैटरेक्ट निरंतर हमारे भीतर बहता रहे, और वो है ज्ञान का झरना, ज्ञान का निर्झर सतत बहता रहे। बाकी सारे कार्य कर रहे हैं संसार के, परंतु जैसे ही थोड़ा भी समय मिले अंदर उस प्रपात में डुबकी लगानी है, उस निर्झर में, और ज्ञान का अजस्त्र प्रवाह अव्यक्त मुरलियों में बह रहा है, वो जीवन में बहने लगे। हमारे जीवन की धारा अव्यक्त मुरलियों की धारा हो जाए, तो आज हम चर्चा करेंगे निर्झर पर। निर्झर अर्थात वॉटरफॉल, निर्झर अर्थात झरना। तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। अभी अभी गीत सुना, क्रिश्चियन सॉन्ग है ये, बाइबल के शब्दों से बना हुआ। एज एन हार्ट पेंटेथ आफ्टर वाटर ब्रूक, आई पेंटेथ आफ्टर धी ओ लॉर्ड। जैसे एक हिरन या हिरनी जल के लिए प्यासी होती है, किसी झरने के लिए, हे प्रभु मैं तुम्हारे लिए प्यासी हूं। ऐसी एक गहरी प्यास हमारे अंदर आ जाए। जन जन से विष पिया है, शरीर को और मन को विष की आदत है, उसे अमृत भी दिया जाए तभी वो विष की तरफ ही भागता है, और इंद्रिय सुख विष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसमें केवल दुख है, केवल एक छलावा है, केवल पश्चाताप है, रिक्तता है। परंतु मन का स्वभाव है वहीं भागना, उसी देह के इर्द गिर्द चेतना घूमती रहती है, शरीर 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 शरीर। शरीर की दीवारों में चेतना कैद है, योग अर्थात देह की कैद से आत्मा को मुक्त करना। तो ज्ञान क्या है, उसकी पिपासा, उसकी प्यास निरंतर हमारे भीतर हो। जिसे हमने अब तक समझा है वो सूचनाएं हैं, आत्मा परमात्मा संगम युग विनाश सामने खड़ा है, विकार दिव्य गुण धारण करो, ये करो ये ना करो, सूचनाएं बहुत है। परंतु ज्ञान केवल सूचना नहीं है, ज्ञान अनुभव है, ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान प्रज्ञा है। ज्ञान समझ है, और समझ का अगर एक सेकंड भी आ जाए, केवल एक पल, तो जीवन रूपांतरित होगा। और नहीं हो रहा है, अर्थात समझ अभी आई ही नहीं है। इसलिए मुरलियों में कितनी बार शब्द आता है समझा। वक्ता समझा जब कहता है तो किसी और भाव से कह रहा है, पूरी मुरली चलाने के बाद शब्द आता है समझा समझा, शायद वो कह रहा है कुछ भी नहीं समझा। अपनी समझ को विकसित करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना, जो हमने अब तक समझा है, व्यक्ति परिस्थितियां जीवन, क्या इससे परे भी और कोई समझ है? जितना हमारा अब तक का अंडरस्टैंडिंग है, उससे परे भी कोई और अंडरस्टैंडिंग है? शेक्सपियर का एक पात्र हैमलेट पूछ कहता है, देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। अभी तो संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने सोची भी नहीं है होरेशियो। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने समझ लिया, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने इस चीज को जान लिया? हमने स्थूल चीजों को ही नहीं जाना तो आत्मा जैसी सूक्ष्म एंटिटी को कैसे हम जान पाएंगे? एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उस पर इल्जाम होता है, वो कहते रहता है कि उसके राज्य में जो भी तथाकथित ज्ञानी है वो सभी मूर्ख है। उसे पकड़ा जाता है, राजा के सामने लाया जाता है और पूछा जाता है, ये तुम किस आधार पर कहते हो कि सभी मूर्ख है? प्लीज एक्सप्लेन। वो कहता है अभी कर देता हूं, मुझे चिट पेपर चाहिए और पेंसिल पेन। कोई भी ज्ञानी जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सब खड़े खड़े कराता है और सबको चिट पेपर देता है और उनको पूछता है, इस पर आपको लिखना है जिस प्रश्न का मैं जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका उत्तर। और प्रश्न है रोटी क्या है, प्रश्न क्या है, व्हाट इज रोटी। सभी अपना अपना उत्तर लिखते हैं और जोर से सारे उत्तर बाद में पढ़े जाते हैं। पहले ने लिखा रोटी गेहूं के आटे का और पानी का मिश्रण, दूसरे ने लिखा रोटी परमात्मा का उपहार है, तीसरे ने लिखा रोटी पोषक तत्व है। चौथे ने लिखा गूथा हुआ आटा और पानी को सेक के बनाया हुआ यह पदार्थ है। अगले ने लिखा यह इस पर निर्भर करता है कि पूछ कौन रहा है कि रोटी क्या है। उसके अगले ने लिखा यह बताना बड़ा कठिन है। किस दृष्टिकोण से बताया जाए? विज्ञान के दृष्टिकोण से या धर्म के दृष्टिकोण से या भूगोल के दृष्टिकोण से या इतिहास के दृष्टिकोण से? और अगले ने लिखा, मुझे नहीं पता। वो व्यक्ति राजा से कहता है, ये तुम्हारे तथाकथित ज्ञानी जन एक छोटी सी बात पर भी एकमत नहीं है, तो किस आधार पर ज्ञानी हुए? तो इस अवधारणा को पहले तोड़ना है कि हमने जाना है, अभी जानना बाकी है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। लर्निंग स्टार्ट्स विथ अनलर्निंग। अगर सीखना है तो पात्र कैसा हो? खाली, भीतर से। आई नो की बीमारी है। तो आज हम 10 बातें देखेंगे। जानने की 10 बातें। और सबसे पहली बात है अध्ययन। कई लोगों ने अध्ययन करना ही बंद कर दिया है, केवल सुनते हैं। ज्ञान का क्या होता रहे? निरंतर स्टडी, रीडिंग, हर दिन पढ़ते रहना है। आत्मा पावन ज्ञान की धुलाई से होगी, आत्मा पावन ज्ञान के स्नान से होगी, जैसे वो झरना नया नया पानी लेके आता है ऊपर से। नया पानी होता है ना कि पुराना पानी होता है? नया पानी। उसी तरह चेतना ज्ञान में डुबकी लगाती रहे और उसका अत्यंत सरल उपाय है अध्ययन। जो हमारी डायरिया बनी है उसमें दोपहर में क्या लिखा है ब्रह्मा कुमारी का, वो जो दिनचर्या में है डायरी, सेल्फ स्टडी के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा, हिंदी में क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। एक है क्लास स्टडी और एक है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी हमारी कितनी चल रही है, या सुबह से लेकर रात तक केवल सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि सेल्फ स्टडी के लिए समय ही नहीं है। बस ज्ञान 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 ज्ञान, उसको प्रोसेस कब करेंगे? केवल डाले जा रहे हैं। तो उसके लिए चाहिए अध्ययन, उसके लिए चाहिए स्वाध्याय, उसके लिए चाहिए रीडिंग। हमारे कमरे में, घर में, जहां हम रहते हैं, सब जगह किताबें हो। एक प्रोफेसर आए थे अभी हमारे पास ओपीडी में, वो इतने शौकीन हैं कि उनका जो बिस्तर है वहां पर भी किताबें हैं। एक किताब बाथरूम में भी रखी है। ऑफिस में अलग, जहां जूते पे लेस बांधते वहां पे भी एक किताब रखी है। बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे उतर जाना। व्यर्थ का चिंतन, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, भटकते रहता है, उसका स्वभाव ही है बंदर की जैसा है, एक डाली से दूसरी डाली। भट्टी अर्थात मस्तक पर अग्नि तिलक लगा देना, बैठो और पढ़ो। देहभान की रावण की लंका को जलाना है, बड़ा कार्य है। सतत अध्ययन, सतत पढ़ाई, इसलिए सारी अव्यक्त मुरलियों की किताबें हमारे पास हो, एक टेबल जैसे स्टूडेंट स्टडी करते हैं। अभी अभी हम एक जगह गए थे, वहां लाइब्रेरी में गए थे, 6 मंजिला लाइब्रेरी थी, रात को 10 बजे थे हम लोग गए, दरवाजा खोला जस्ट देखने के लिए क्या है ये, यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी, देखा सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक एक का टेक्स्ट, इतनी इतनी किताबें, एक माहौल था पढ़ाई का, सब पढ़ रहे थे बैठ के, और 2 बजे तक रात को 24/7, कोई लोग आते ही 10 बजे है सुबह तक पढ़ते हैं ऐसे। फिर 4थी मंजिल पर गए, वहां पर भी सेम, एक एक मंजिल पर बच्चे पढ़ रहे, यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग सब्जेक्ट। बाबा ने कहा है ये स्टूडेंट लाइफ है, एंड स्टूडेंट लाइफ कैसी है, बेस्ट लाइफ। और स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ चाहिए, जैसे स्टूडेंट के पास होता है पेन पेंसिल सब कुछ, स्टडी करनी है, अंडरलाइन करना है, लिखना है, सब कुछ, नोट्स हो हमारे पास अच्छे अच्छे, क्योंकि जब मन की अवस्था नीचे चली जाती है तो फिर कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर हाँ हमारे हाथों से अगर कुछ लिखा है तो वो थोड़ा प्रभावित करेगा। और अब भी यहां बैठे बैठे भी बिना डायरी पेन के नहीं बैठना है, क्योंकि इस वातावरण में जो लिखा जाएगा उसमें अचानक कोई टचिंग हो सकती है ऊपर से और वो खो जाती है, अगर हाथ में पेन हो तुरंत उतर जाएगी वो, और हो सकता है पिछले 10 साल की जो समस्या है उसका वो उत्तर है। अचानक उत्तर अचानक अवतरित होगा किसी अनगार्डेड मूवमेंट में, तो सबसे पहला ज्ञान का ये झरना निरंतर यदि हमारे भीतर बहता रहे तो क्या चाहिए, अध्ययन। दूसरा बाय हार्ट कर लेना है कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ मुरली में आए हुए पॉइंट्स कैसे कर लेना है, याद कर लेना है पूरे, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे परिस्थितियों में, क्योंकि परिस्थितियों के समय ज्ञान खो जाता है, जब परिस्थितियां नहीं है तभी ज्ञान याद नहीं, तो परिस्थितियों में कहां से याद आएगा। और एक छोटी सी लाइन, एक वाक्य, क्योंकि ये परमात्मा महावाक्य जीवंत शास्त्र है, उसमें एक अद्भुत सी ऊर्जा है, लिविंग मास्टर द्वारा दिए गए ये वाक्य है, कुछ कुछ लाइनें याद करके रखनी है। हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, कितनी छोटी सी लाइन है, बहुत पावर है इसमें। 100 हिमालय से भी बड़े यदि विघ्न आ जाए, याद है क्या ये, तो भी मैं हिलूंगा नहीं, 100 हिमालय से भी बड़े विघ्न आ जाए, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। असंख्य महावाक्य है, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, उसको क्या करके रखना है, नोट करके रखना है, रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। जब भी तुम मुझको पुकारोगे मैं आऊंगा, जब भी तुम कहोगे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, जब तुम पुकारोगे मैं आऊंगा, पर तुम्हारी पुकार बड़ी गहरी होनी चाहिए, उथली उथली नहीं, ऊपर ऊपर की नहीं, डेप्थ ऑफ द हार्ट। क्या ऐसे हमने पुकारा है? नहीं पुकारा है। पुकारते हम संकट में ही है, परंतु वह संकट के समय भी निकली हुई पुकार गहरी हो। जब आराम से व्यक्ति बैठा रहता है तो व्यर्थ विचार चलते रहते, जब चलता है तो थोड़े कम व्यर्थ विचार चलते हैं, जब रनिंग करता है तो बहुत कम, और जब कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई आदमी बंदूक लेके, तब कोई कंप्लेंट करेगा मेरे व्यर्थ विचार बहुत चल रहे। जागृति आ जाती है एकदम से अचानक। इसलिए विकार भी जो है ऊर्जा है एक्चुअली, एकमात्र मुरली है जिसमें बाबा ने कहा इन विकारों को तुमको जीतना नहीं है, इनका रूपांतरण कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। ऊर्जा को जीतेंगे उस विकारों को तो बदला लेंगे, ऊर्जा विकारों से भागेंगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसका स्वरूप ही बदल देना है। एक व्यक्ति जब हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी ऐसे पतले दुबले होते हैं, जब उनको अटैक आता है 10 लोग लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, इतनी ताकत कहां से आ जाती है उसमें? वैसे तो चल भी नहीं सकता, पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता है ऐसे दुबले, क्योंकि वहां क्रोध की ऊर्जा है। इसके लिए ऊर्जा को दिशा देनी है, और वो होगा ज्ञान से। इसलिए हमारा चित्त निरंतर ज्ञान के इर्द गिर्द घूमता रहे, और जो हम सोचते रहते हैं वो अपने आप होते रहते हैं। महात्मा गांधी यरावड़ा जेल में जब थे, तब उनका नियम था वो 10 बादाम भिगोए हुए खाते थे। जब वल्लभ भाई पटेल ने देखा खाली 10, ये इतना नाश्ता हो गया, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, तो उन्होंने एक दिन 5 और डाल दिए उसमें, 15 बादाम। उनका लगा बूढ़ा आदमी है, इनको क्या पता चलेगा। महात्मा गांधी ने देखा बादाम थोड़े ज्यादा लग रहे, उन्होंने पूछा वल्लभ भाई पटेल से कि बादाम थोड़ा एक बार गिनती करो। गिनती की तो 15 थे। महात्मा गांधी ने कहा यह ज्यादा है। वल्लभ भाई ने कहा 10 क्या और 15 क्या, क्या फर्क पड़ता है? महात्मा गांधी ने कहा आपने मेरी आंखें खोल दी, अगर 10 और 15 में फर्क नहीं है तो 5 और 10 में क्या अंतर है फिर? तो कल से मैं केवल 5 ही लूंगा, क्योंकि जो चेतना निरंतर परिग्रह के बारे में सोच रही है, भीतर निरंतर चिंतन चल रहा है अपरिग्रह का। अपरिग्रह अर्थात कम से कम रखना है चीजें, अपरिग्रह अर्थात कुछ भी स्टोर नहीं करना है, अपरिग्रह अर्थात जैन धर्म में 5 महाव्रत में 4 व्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना है, संचय नहीं करना है, अपनी आवश्यकताओं को, अपने भोजन को, अपनी चीजों को, सब चीज को कम कम करते जाना, क्योंकि वो उसके विषय में निरंतर सोचते थे, इसलिए उनकी धारणा ये थी। तो जो हम मन में सोचते रहते हैं वो अपने आप कर्म में उतरता है। जो व्यक्ति अपरिग्रह का सोच रहा है उसके कर्म में अपने आप अपरिग्रह उतरने लगेगा। तीसरा, चिंतन, चर्निंग अर्थात मनन करना। ज्ञान का क्या करना चाहिए? मनन। जब ज्ञान का मनन किया जाता है तो शब्द अनुभव बन जाते हैं। शब्द क्या बनेंगे? अनुभव। नहीं तो केवल रूखा ज्ञान रहेगा वो। कई लोग आकर हमसे कहते हैं हम खुद ही इतने अशांत हैं, लोगों को 7 दिन का कोर्स क्या करा है, हमारे अंदर ही इतनी बेचैनी है, शर्म आती है, ऐसा भी कहा है किसी किसी ने, कैसे करा है? क्योंकि ज्ञान से रिक्त हो गए और योग से मुक्त, ज्ञान रिक्त और योग मुक्त अवस्था। ज्ञान अर्थात वो सूचना है नहीं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें घर लेके जाने के लिए, तुम्हें आत्मा अभिमानी बनना है, रूहानी अभिमानी बनना है, माया है जिन, तुम्हारे अंतर कमजोरियों का एक अंश भी नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल एविएशन, निराकारी आकारी अवस्था का अनुभव करो, एक रस स्थिति को बनाओ। ज्ञानियों की सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों को सुधारना, दूसरों को सुधारने की इच्छा, अहंकार रस, गुरु बनने की इच्छा। चिंतन क्या करना है ज्ञान का, एक एक पॉइंट पर ठहर जाओ, बैठ जाओ। क्या करना है, पॉइंट पर बैठ जाना है, मुरली के ऊपर मत बैठ जाना, पॉइंट पर बैठ जाना हिंदी वाक्य है, अर्थात रुक जाना, रुको, सोचो, चिंतन करो। जो व्यक्ति जो चिंतन करते रहता है उसको वो दिखते रहता है। आप भोजन के विषय में चिंतन कर रहे हो तो भोजन के विषय में जागृति बढ़ती है, आप पैसों के विषय में दिन रात चिंतन कर रहे हो तो जहां देखो वहां पर कोई भी वस्तु दिखे, ये क्लास चल रहा है, ये माइक कितने का होगा, चिंतन ये चालू है, भोग लग रहा है, भोग के ऊपर का वो कपड़ा है वो कहां मिलेगा, चिंतन वहां चल रहा है। मधुबन में वो चीज है वो हमारे वहां होनी चाहिए। ये शॉल बहुत अच्छी है इनकी, कहां से ली, ये पर्स भी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा है क्या। बुद्धि में जो चलता है वो बाहर दिखता है, महात्मा गांधी जी का एक दूसरा उदाहरण भी है। उनकी और एक आदत थी, वो सुबह सुबह पानी, नींबू और शहद, तो मोरारजी देसाई थे उनके साथ, गरम गरम पानी एक दिन ले लिया, गरम पानी था वो, उसमें नींबू वो सब डाल के रखा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कहा इसको बिना ढके क्यों रखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी अभी रखा है, कुछ गिरा नहीं होगा उसमें, उसमें कुछ नहीं गिरा होगा, तो मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा इसलिए आप ले लेंगे इसलिए रखा है। उन्होंने कहा कुछ गिरने की बात नहीं है, उस भाव से कितने जंतु शायद उसकी हत्या हो जाएगी। जो व्यक्ति अहिंसा का ही भीतर चिंतन कर रहा है उसको हर वस्तु में अहिंसा ही दिखेगी, वो ढूंढेगा अहिंसा को, उसे वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि कुछ तो नुकसान हो रहा है, किसी जीव की हत्या हो रही है। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं करे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो केवल एक रटा रटाया चिंतन। ज्ञान के भी सात सात नहीं आठ आठ लेवल्स है, वो अभी नहीं चर्चा करेंगे, खाली बता रहे एट लेवल्स ऑफ लर्निंग है। उसमें से पहला जो जीरो लर्निंग जिसको कहते हैं वो है पढ़ना, सुनना, लिखना, रट लेना, बस। जो सारे यूनिवर्सिटी सारे स्कूलों में होता है आज, फिर एग्जाम दो रट कर, समझता किसी को कुछ नहीं, उसे कहते हैं जीरो लर्निंग। बैठो मुरली में, जाके बैठा, पूरी मुरली पूरी हो गई पर कोई भी एक प्रकाश भी नहीं घुसा अंदर, उसे कहते हैं जीरो लर्निंग। या मुरली सुनाई, पूरी सुना दी पर सुनाने वाले को कुछ खबर नहीं क्या सुनाया, बेहोशी में ही सुना रहे और बेहोशी में ही सुन रहे, दैट इज कॉल्ड जीरो लर्निंग। वो लेवल वन है, ऐसे लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स, लेवल सेवन तक है, उसकी चर्चा को भी बाद में, ये टॉपिक रह जाएगा। तो तीसरा है ज्ञान का क्या करना है, चिंतन करना है। उसमें ढेर सारे प्रश्न है, कहाँ करना है चिंतन, हो सके तो प्रकृति के सानिध्य में करो। कब करना है चिंतन, सुबह सुबह करो। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा चिंतन ज्ञान का सारे दिन भर चलता रहे। कैसे करना है, प्रश्न पूछो। चिंतन कैसे होता है, प्रश्न से। व्हाई, व्हिच, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, फाइव वाइव्स एंड वन हस्बैंड, ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। पूछो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, किस लिए है, किसने बोला, कब बोला, कहाँ बोला, तो प्रश्न कर, तो चिंतन चलता है। हो सके तो मुरली जो पढ़ते हो उसमें से प्रश्न उत्तर बनाओ रोज 10, सुबह बना के रख दो और खुद ही फिर उत्तर ढूंढो उनका जीवन में। रादर देन मुरली पॉइंट्स लिखने से अच्छा प्रश्न लिखो। प्रश्न, एक रस स्थिति, एक रस शब्द आया, एक रस शब्द का क्या अर्थ है, वर्ड लिखो और छोड़ दो, फिर ढूंढना है अभी इसका अर्थ। माया जिन है, जिन अर्थात क्या, लिख के रखो। माया जिन क्यों है, प्रश्न लिख के रखा और छोड़ दिया, फिर इसका उत्तर दिन भर ढूंढते रहो। मुरली पॉइंट्स नहीं लिखना, खाली प्रश्न लिख के रख देना 10 प्रश्न, और उत्तर ढूंढने किसी है, खुद को, किसी को भेजने नहीं है, खुद ही ढूंढने। जब हम उत्तर ढूंढते हैं तो चिंतन चलता है, बुद्धि डेड ना हो जाए। सुन 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 के, सुन सुन के, सुन सुन के, जैसे रामायण होता है ना, इतनी बार सुनते हैं लोग, सारा रामायण पता है, इसलिए रामायण की कथाओं में तो देखो लोग सोते रहते, ऊँगते रहते। यहाँ पर भी तो सबसे ज्यादा नींद किस में आती है, मुरली में, एक अमृत वेला में, बाकी समय अलर्ट, क्योंकि यहाँ सामना स्वयं से होता है, ये दोनों काम अकेले के है। अंदर की बेचैनी बाहर निकलती है। चौथा है चर्चा, डिस्कशन। छोटा एक ग्रुप होना चाहिए जो बैठे और ज्ञान की आर पार चर्चा करे, जिसका कोई रिकॉर्डिंग ना हो। जहां रिकॉर्डिंग हो जाता है वहां बंधन आ जाता है, लोग पता नहीं कौन सा टुकड़ा काट के कहां डाल दे। उसमें बहुत एक्सपर्ट है जो गंभीर साधक है, उन्हें ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए, चर्चा। एक मेरा बाबा किताब है यज्ञ की, इतनी मोटी, बाबा के महावाक्यों का संकलन, उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य लिखे है। उसमें 10वां कर्तव्य है, ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। डिस्कस, ये क्या है, आश्चर्य के बात ही देखना है उसे, अरे ये क्या बोल दिया, अरे ऐसा होता है क्या। डिसअग्री, प्रश्न करो उसको, ये बाबा ने कहा, ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है जो दे दिया गया सत्वचन महाराज। बाबा ने कहा जज करो, जो मैं कहता हूं राइट हो या शास्त्र में जो लिखा है वो राइट है। जज का किया ही नहीं, वैसे ही मान लिया। जिस जीवन की यात्रा निश्चय से चालू होती है वो संशय में खत्म होती है, इसलिए जीवन की यात्रा संशय से भी ज्यादा संदेह से चालू हो, डाउट से चालू करो यात्रा। डाउट करो ये क्या है, आई डोंट अग्री, तो कहीं जाके यात्रा निश्चय पर खत्म होगी। शुरुआत में ही सब कुछ मान लिया कि हाँ ये है, ये राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, इसलिए देखा गया जो छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में आ जाते हैं वो बाहर बड़े होने के बाद में नहीं चल पाते, क्योंकि कभी इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, उनको बता दिया गया है कि यही सत्य है। वही सारे जो छोटे छोटे बच्चे जो बड़ों बड़ों का कोर्स कराते थे वो नहीं बन पाते ब्रह्मा कुमारी न कुमार, क्यों, क्योंकि जिज्ञासा ही उनकी खत्म हो गई, सब देख लिया है उन्होंने यहां का। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो भक्ति जिज्ञासा, जितने उपनिषदों के स्क्रिप्चर्स है उनकी शुरुआत कहां से हुई है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र की शुरुआत है। अब से किसी किताब की शुरुआत होती है क्या, अब हम जानेंगे ज्ञान क्या है, अर्थात अब तक तुमने जो पढ़ा वो ज्ञान है ही नहीं। किताब की शुरुआत है अत तो भक्ति जिज्ञासा, नारद भक्ति सूत्र, शुरुआत वहां से है कि अब हम जानेंगे भक्ति किसे कहते हैं, अर्थात जो अब तक तुमने जो पढ़ा वो भक्ति है ही नहीं, शुरुआत ही अब से है नाउ। इसलिए ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, संदेह चाहिए, संशय नहीं संदेह। संदेह और संशय में भी अंतर, संशय निगेटिव है, संदेह अर्थात हमें समझना है इस ज्ञान को, इसलिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या है ये। संशय होता है वो एक अलग होता है, जिस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं है, यहां विश्वास हो गया वो स्टेज तो हमने संशय की स्टेज को क्रॉस कर दी है, वो नहीं है, पर अभी संदेह है मन में बहुत सारे। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान कैसा है, ये साक्षात्कार क्या होता है, संदेशी बैठती है, कौन जाता है सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सत्युग क्या होगा, कैसे होगा, प्रश्न है मन में और ये प्रश्न होने चाहिए, इंक्वायरी है ये। अगर यही खत्म हो गया तो वो मुरली में जीरो रस, वो मुरली में बैठना अर्थात एक कर्मकांड केवल है, रिचुअल, सुनाना भी और सुनना भी केवल एक रिचुअल, और जिससे क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति तो प्रश्न मांगती है, हलचल में क्रांति होती है, मन की भूमि में भूकंप जब होता है तब बीज डाला जाए, वहां क्रांति होती है, वहां परिवर्तन होता है। तो डिस्कशन क्या करना है, एक छोटा सा ग्रुप हमने देखा है कई सारे सेंटरों पर, रात को बैठते हैं, बहनें बैठती है, या कुमारों का ग्रुप देखा है, या ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तीन तीन लोग चार लोग मिलके ज्ञान का आज की मुरली हो गई उसमें क्या था, लेट अस डिस्कस। और जो डिस्कशन करते हैं उसमें से नई नई पॉइंट निकलती है अंदर से, जो अकेले में पढ़ के नहीं निकलती, चुपचाप मौन में पढ़ रहे हैं, इतनी बुद्धि भटकती है, और जब डिस्कशन होता है तो बुद्धि के कपाट खुलते हैं, अचानक नई पॉइंट आती है जिसके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। तो डिस्कशन मस्ट है। अगला पांचवा एंटरटेनमेंट। ये ज्ञान जो है ये रूखा सूखा ज्ञान ना हो जाए, इसमें कहानियां हो, इसमें क्रिएटिविटी हो, इसमें चित्र हो, इसमें पिक्चर हो, इसमें कलर भर देने हैं, इसमें कोई एक्टिविटी हो, इसमें ड्रिल में भी नवीनता हो। जहां नवीनता खत्म हो जाती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। ज्ञान रस युक्त जब होता है तब जागृति आती है, नहीं तो वो डेड ज्ञान है, उसमें रस ही नहीं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़े जा रहे हैं जबरदस्ती। मुरली क्लास में जाते हैं इसलिए क्योंकि ये ब्राह्मण फिर कहते हैं तुमको माया ने खा लिया, इस डर से, डर है डर, वो डर चला रहा है। तो ज्ञान में क्या भरना है, रस भरना है। ज्ञान में क्या भरना है, रमणीकता भरनी है। ज्ञान में क्या भरना है, एक्टिविटीज अरेंज करो। पूरी मुरली है इसमें से क्या एक्टिविटी हो सकती है, गार्डन में जाओ चार लोग पांच लोग एक्टिविटी करो, या कोई हॉल है उसमें बैठ के एक्टिविटी करो, लिखने की एक्टिविटी, कुछ करने की एक्टिविटी, टेक्स्ट को एक्शन में कन्वर्ट कर देना है, जो टेक्स्ट है उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देना है। इसकी कोई एक्टिविटी हुई अच्छी वाली एक्टिविटी जो सब एंजॉय करे, वो लिखने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हजारों एक्टिविटीज की जा सकती है। एक्टिविटी कराने वाले तो लोग उसमें एक्सपर्ट लोग हैं, कंपनियों में जाते हैं और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले थक जाते हैं, बहुत सारे गेम्स ग्राउंड में गेम्स कर खिलवाते हैं, उनको सिखाते हैं, छोटे छोटे गेम्स, बहुत सारे गेम्स, 100-200 गेम्स उनके पास होते हैं, वो गेम्स व्यक्ति करता है ना तो उसको मजा आता है, और उस गेम्स के द्वारा ज्ञान को समझाते हैं, मॉरेलिटी को। नहीं तो लेक्चर सुनना किसको पसंद है। एक पति पत्नी घर आते हैं, वो जो पत्नी है इलेक्शन लड़ने वाली है, इलेक्शन के लिए आज लास्ट डे कैंपेनिंग का, पति आता है, वो भी आती है, वो पति कहता है मैं बहुत थक गया हूं आज, अब तो मैं सीधा सोऊंगा। पत्नी कहती है मैंने 15 भाषण किए आज, तुमने क्या किया? वो कहता है सुना ना तुमको, सुन सुन के तो भाषण करने वाले को तो बड़ा अहंकार रस मिलता है ना। सब लोग बैठे हैं, डायरी खोल के लिख रहे, पता नहीं मेरे अंदर कोई प्रवेशता तो नहीं होगी, कोई महावाक्य तो नहीं बोल रहा हूं मैं, खतरा है बड़ा, अहंकार का खतरा है, ज्ञानी हो जाने का खतरा है, दूसरे थोड़े कम ज्ञानी है ये भाव आ जाने का खतरा है। उसको थकान थोड़ी ना होती, जो बाजू में पीछे गाड़ी में बैठते सामने उनको उल्टी जैसा होता है, जो ड्राइवर होता है उसको कुछ होता है क्या? वो थकता है? वो नहीं थकता है। जो बाकी बैठे होते हैं ना उनको कुछ कुछ होता है। वो ड्राइवर को कभी कहता है कि मुझे उल्टी हो रही गाड़ी रोकता हूं, उसको क्या होगा? यहां पे भी ऐसा, ये भी गाड़ी है एक। तो एंटरटेनमेंट, ज्ञान में क्या हो? एंटरटेनमेंट हो, थोड़ी कॉमेडी हो, थोड़ी सब हो उसमें। अगला, उसको स्वरूप में लाना है, फॉलो इट इन प्रैक्टिस। जो सुना आज उसको तुरंत स्वरूप में लाना है, जो सुना तुरंत करके देखो। मुरली में पॉइंट आई, मदद करो, फिलेंट्रोफी, किसी की मदद कर दो। और मदद अर्थात पकड़ के उसको ज्ञान योग पिलाना ही मदद नहीं है, नॉन ज्ञान नॉन योग की मदद करो। पकड़ पकड़ के जिसको मिले पकड़ो, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। और ट्रेन में बैठ के तो ऐसे बेरहमी से रहम करते हैं बेचारे, उनके चेहरे देखना जब उनका ट्रेन में कोर्स होता है तो छोटा चेहरा हो जाता है। आत्मा से चालू करते सीधा ब्रह्मचर्य तक, ब्रह्मा की कहानी, और ये रहा सेंटर का एड्रेस, और ये मेरा नंबर। और आज से बाहर का खाना बंद, इतने दुखी करते हैं उनको, बड़ा दुखी कर दिया। ऐसी बेरहमी से रहम। अभी इधर पीस पार्क घूम के आए, उधर म्यूजियम घूम के आए, फिर यहां पहुंचे। तुम आत्मा होते हम सुन के आए, हटाओ, मैं सुनाता हूं, प्रजा मुझे बनानी, फिर से सुनो, बताओ कौन हो? वो कहता है मैं डॉक्टर, मैं वकील। ऐसा जब उत्तर कहते तो अंदर से इतनी खुशी होती है, अब इसको बताऊंगा ये कौन है। अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है इसमें, बड़ा अच्छा लगता है अगर उसने ऐसा कुछ उत्तर दे दिया तो। तुम आत्मा हो यहां, और ये मेरा नंबर। अत्यंत बेरहमी युक्त रहम। हर व्यक्ति को तुम्हारा हमारा ज्ञान योग नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। उसे केवल सुनने वाला भी मिल जाए ना उतना काफी है, उत्तर तो उसको भी पता है। उसे क्या चाहिए? एन ईयर बस, उसे बस एक टच चाहिए, कंफर्ट, बाकी उसे पता सब कुछ है। उसे वाइब्रेशंस चाहिए, ओनली वाइब्रेशंस, हर बार ज्ञान नहीं चाहिए। इरिटेट हो जाते हैं उससे लोग, ज्यादा सुनाने से, सुनने से। कहां थे हम? तो क्या करना है? स्वरूप, जो भी सुना, छोटा सा एक पॉइंट, मुरली में स्लोगन आया, तुम्हारा कमजोरी का एक अंश भी नहीं होना चाहिए आज, है ना? तो सोचो कौन सा अंश है कमजोरी का? डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का अंश है ना, तो उसको हटाओ। संकल्प करो 3 दिन इंटरनेट विदाउट इंटरनेट रहने का, देखो क्या होता है। मोबाइल बिना मोबाइल रहने का, बिना मैसेज रहने का, बड़ी शांति आ जाएगी। ZUT, जीरो यूट्यूब, ZUT, जीरो यूट्यूब, देखना ही नहीं, संकल्प करो अगले 3 दिन, यहां से जाने के बाद के 3 दिन, अभी नहीं, देखो क्या होता है, शांति आ जाएगी। ये भी संकल्प है। और जब हम छोटे छोटे संकल्प करते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं, माइक्रो विक्ट्रीज, माइक्रो विंस, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर पता चलता है इसको छोड़कर ही फायदा है। उसी तरह भोजन के छोटे छोटे प्रयोग, माइक्रो विन, किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही कर लिया, जीत हो गई। वो जीत कॉन्फिडेंस उत्पन्न करेगी आगे की जीत के लिए। अगला, गहराई। ज्ञान की क्या करना है? गहराई में जाना है, उतला उतला नहीं, ऊपर ऊपर नहीं। ज्ञान जब स्मृति बन जाता है तब शक्ति बन जाता है। उसकी डेप्थ में जाना है, उसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए। बैठो और सोचो क्या है, रहस्य की तरह देखो उसको। ये मुरली जैसे एक रहस्य है, अ मिस्ट्री एंड रैप्ड इन एनिग्मा, एक रहस्य है। क्या रहस्य है इसमें, मुझे समझना है। एक छोटे बालक की तरह, यहां जितने दिन है, सोचो मैं एक छोटा सा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं पता, भगवान के घर आया हूं, मुझे यहां से कुछ सीख कर जाना है। अपने सारे ज्ञान को, योग को, धारणा को और सेवाओं को बाजू में रख दो और एक छोटा सा निरागस बालक जिसे सीखना है। इसलिए नहीं कि जो सामने वक्ता बैठा है बहुत बुद्धिमान है ना, जितना हम रिसेप्टिव होंगे, संवेदनशील, उतना ज्ञान को धारण करेंगे। और जब ज्ञान धारण होता है तो वो व्यवहार बन जाता है। ज्ञान प्लस धारणा इक्वल टू व्यवहार, ज्ञान प्लस स्मृति इक्वल टू शक्ति, ये 2 इक्वेशन है। गहराई, गहराई के प्रति प्यार हो, ये ऊपर ऊपर से कुछ खुशी नहीं मिलती है। ऊपर ऊपर क्या मिलते हैं, एक साकार मुरली अव्यक्त वाणी थी जिसमें कहा ऊपर ऊपर तैरेंगे तो मछलियां मिलेगी, नीचे जाएंगे तो मोती। मोती चाहिए या मछलियां? सोचना अर्थात केवल सोचना मछलियां, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी जो नशा चढ़ा हुआ है वो शरीर का नशा है। संसार में सबसे बड़ा नशा किसका है? शरीर का। अगला, हियरिंग, सुनना। पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना अर्थात आधा परिवर्तन। ऐसे सुनो कि बस ये अंतिम महावाक्य है, अभी शरीर छूटने वाला है। मुरली में ऐसे बैठो कि जैसे ये लास्ट है। इतनी एकाग्रता से, जैसे कोई खजाना है जिसका नक्शा हमारे पास 10 साल से था और आज वो व्यक्ति उसका रहस्य बताने वाला है। और रक्षा हमारे ही घर का है, हमारे ही घर में खजाना छुपा हुआ है, हमने हर जगह खड्डा खोद के देख लिया, कहीं नहीं मिला, और आज वो व्यक्ति बता रहा है और वो भी बस कितनी एकाग्रता से हम सुनेंगे। सोचो हमारे जीवन में जो समस्या, प्रॉब्लम, मुश्किलें, उलझने हैं, उसका उत्तर इसमें से मिलने वाला है, तो एकाग्रता बढ़ जाती है। यदि कोई यहां आए और डायबिटीज पर क्लास कराए तो हम इतना ध्यान से नहीं सुनेंगे, डायबिटीज की क्लास चालू है, डायबिटीज, शुगर होता है तो क्या होता है। पर आज सुबह ही हमको पता चला, डॉक्टर ने बताया पहली बार 500 शुगर हमारा ही आया है, हमको पता ही नहीं, और तब डायबिटीज वाली क्लास चल रही है, तो कैसे सुनेंगे फिर? ऐसे कान खोल के, आंख खोल के, क्योंकि समस्या अब हमारी है। एक भाई ने हमसे प्रश्न पूछा था, इतना दिन भर पेशेंट देखते रहते, दूसरों की तकलीफें सुनते रहते हो तो तुमको डिस्टर्ब नहीं होता है? हमने कहा था तकलीफ जब दूसरों की होती है तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। तकलीफ हम डिस्टर्ब कब होते हैं, जब तकलीफ हमारी है। ये मनुष्य का स्वभाव है, साइकोलॉजी है। सुनना, एकाग्रता से सुनना, पूर्ण एकाग्रता से। और हो सकता है सुनते सुनते अचानक, सुनते सुनते अपने ही जीवन में डुबकी भी लगानी है, देखते जाना है हम कहाँ खड़े हैं, जो बातें अभी भी हम जो बोल रहे हैं इसमें से कुछ कर रहे हैं हम, अच्छा ये नहीं कर रहे चलो इसको करते हैं। और जब बड़ी सभा के बीच में कोई संकल्प लिया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत होता है, पावरफुल रहता है। अगला आए इम्बाइब। इम्बाइब अर्थात धारण करना, उसे पूर्ण रूपेण अपने अंदर समाने देना, उस पॉइंट को। ज्ञान हमारे भीतर घूमता रहे, शरीर में भी मन में भी, रग रग में, नस नस में। उसको खींचना है। ज्ञान शब्द नहीं है, वाइब्रेशंस है। और वाइब्रेशंस को इमेजिन करना है कि मुझ में आ रहे हैं। एक भाई था, हम एक स्थान पर गए थे, वहां पर एक मंदिर था, एस्कॉन मंदिर। एस्कॉन सुना है, हरे कृष्णा। तो वहां पर एक भक्त थे, बहुत अनन्य, उनको जन्मांद थे, दिखाई नहीं, मतलब 4-5 साल के थे तब आंखें चली गई, पर महापंडित थे भगवद गीता के, और यंग थे, 30 उम्र थी उनकी, पर पूरा गीता उनको याद थी। और उनके पास ब्रेल लिपि की गीता थी, इतनी बड़ी गीता, जो ऐसे ऐसे करते रहते। तो हम एक बार उनसे, वो हमारे मित्र थे, तो हम उनके साथ बैठे थे, तो वो क्या कर रहे थे, भगवद गीता को ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, उनको दिखता नहीं था। बहुत शुद्धता का पालन, बाथरूम के लिए अलग छड़ी, ऑफिस जाने के लिए अलग छड़ी, मंदिर में घूमने के लिए अलग छड़ी। उनका भोजन आता था, वो भोजन भी पहले इतना सम्मान से नीचे बैठकर, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं दिखता था, जीरो विजन। तो हमने देखा वो भगवद गीता उनके हाथ में थी, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे। हमने उससे कहा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, फील कर रहा हूं, ये कृष्ण की वाणी है ना, ये परमात्मा वाणी है, उसको मैं फील कर रहा हूं। मुरली को फील किया है हमने कभी? हाथ लगाना है उसको, ये परमात्मा महावाक्य है, इतनी भावना उसकी। हमने कहा, आप ट्रेन में कैसे जाते हो, अकेले चले जाते हो, कहीं पे भी अकेले, ट्रेन में भी अकेले, वॉशरूम में कैसे करते हो, वो भी उसको पता है, नल कहाँ है, हाथ कितना डिस्टेंस पर है, पर नई जगह जाते हो, वो कहता है, वो मुझे गाइड करता है हर जगह, भीड़ में, सब जगह। और वो क्लासेस लेते हैं, लोगों को सिखाते हैं गीता ऑनलाइन, वो भी, उसको सब आता है, मोबाइल सब कुछ। तो कितनी धारणाएं हैं। तो ज्ञान को क्या करना है, धारण। और लास्ट जर्नलिंग, लिखना। लिखने की आदत डालनी है, बिना लिखे तो बैठना ही नहीं है। हमारे जो हाथ है बड़े पाप की है, रोज लिखना है, एक पेज तो लिखना ही है। जो बिल्कुल नहीं लिख रहे, संकल्प करके जाओ, हमें ज्ञान एक पेज रोज लिखना है, और अच्छे अक्षरों में लिखना है, सुलेख, कुछ के कुछ नहीं लिखना है, गोल 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 गोल, स्पष्ट, प्रिंट हैंडराइटिंग, जैसे प्रिंट किया जाता है ना वर्ड, वैसा वैसा ही दिखना चाहिए, वो भाव वैसा ही होना चाहिए, उसकी मात्राएं वैसी होनी चाहिए, करेक्ट, शिरोरेखा बराबर आनी चाहिए, दो शब्दों के बीच का अंतर भी ठीक ठाक होना चाहिए, दूर दूर नहीं, जितना दूर दूर होगा जीवन में अकेलापन रहेगा। ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग से ही निदान करते हैं लोग जीवन में क्या चल रहा है, बहुत कुछ जिसकी शिरोरेखाएं ठीक नहीं रहती है, जीवन में काम भी सारे अधूरे अधूरे करते हैं, जिसका क एक छोटा और एक बड़ा रहता है, उसके जीवन में बड़ी विसंगतियां रहती है। इसके लिए क को भी ठीक से लिखना है। ब का पेड़ जो ठीक से नहीं फाड़ते हैं, ऐसे आड़ा बीच का नहीं, तो वर्क राइटिंग लिखना, वो पांडवन में देखा है ना, वहां पे मुरली लिखी रहती है। सोचो कल आपको लिखनी है, कैसे लिखोगे? बेहोशी में लिखोगे? कैसे लिखेंगे? होश में लिखेंगे ना। जब होश में लिखते हैं तो शब्द शब्द, राइटिंग इज मेडिटेशन। राइटिंग क्या बन जाए? ध्यान, योग, तपस्या। तो ये 10 बातें हो गई। सबसे पहला बताया अध्ययन, रीडिंग, रोज पढ़ना है, नई नई बातें पढ़नी है, नई नई मुरलियां पढ़नी है, अव्यक्त संदेश पढ़ने हैं, जहां जहां से ज्ञान की कोई चीज मिलती है वो सब पढ़ते रहना है, ताकि मन ऊंचाई में रहे। मन का स्वभाव है नीचे आ जाता है, वो नीचे गिरता है। ये जो शरीर भान की मक्खियों पर वो बैठता है, मक्खी बन जाता है, इधर उधर जाता है। दूसरा, बाय हार्ट, कंठ कर लेना है, साकार महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा, ये ज्ञान है कंठ करने का। अव्यक्त महावाक्य, शांतिवन में चली हुई मुरली, बाप जो सुनाते हैं तुम्हारी बुद्धि पर छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। बाय हार्ट, कुछ कुछ वाक्य ऐसे हो जो लिख के रख देने हैं, जो हमेशा याद रहे, हमेशा भूले ही ना। तीसरा, चर्निंग अर्थात चिंतन, मनन, उसका चिंतन करना है। खाली मुरली सुन लिया, अभी जो क्लास यहां पूरा हो गया, अभी हो जाएगा 2 मिनट में, जहां वक्ता ने क्लास छोड़ा आपको उसको आगे बढ़ाना है अपने मन में, या यहां से जाने के बाद जो नोट्स जहां पूरे हो जाते हैं, अब सोचो ये तो उसका चिंतन है, ये उसमें मनमत हो सकती है, वो परमत है ना, वो तो अपना सुना रहा है, ये करो वो करो वो करो, खुद तो करते नहीं और हमको सुनाते, ये सब विचार आते हैं साथ साथ। अगर किसी के विषय में हम एक निगेटिव बात सुन लेते हैं, तुरंत उसको स्वीकार करते हैं, ये हमारे मन का स्वभाव है, और उसके बारे में 10-100 बातें पॉजिटिव कोई सुनाता है, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, हम क्यों माने? पर अगर एक सुनाता है निगेटिव, तुरंत विदाउट प्रूफ हम उसको अंतर समा लेते हैं, हम तो मूर्ख निकले, हम तो ऐसे ही मानते थे उसको, ये तो ये निकला, कितना सत्य है किसको पता। तीसरा, चौथा, डिस्कशन, एक छोटा ग्रुप बनाना है अपना, अगर कोई भी नहीं है तो खुद ही डिस्कशन करो, अपने बाबा से साथ डिस्कशन करो, डिस्कस करते रहो, पूछो उसको ये क्या है वो क्या है ऐसा क्या है वैसा क्या है, तुमने ये कहा क्यों कहा, आई डोंट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, अब बताओ तुम क्या करना है। अगला, एंटरटेनमेंट, ज्ञान में क्या हो, रमणीकता हो, नहीं तो वो बोरिंग हो जाता है। अगला क्या है, फॉलो इट इन लाइफ, अपने जीवन में उसको उतारना है छोटा छोटा। अगला, गहराई में जाना है, ऊपर ऊपर सतही नहीं हो, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, मुझे मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मुझे गहरे जाना है, बहुत डीप, तब तक चैन नहीं है। डिवाइन डिस्कंटेंट निरंतर हो, असंतुष्ट भव, दैवीय असंतोष, जीवन में क्या हो, दैवीय असंतोष अर्थात कि और पाना है और पाना है, और तो बहुत कुछ बाकी है। ये कोई अनुभव है योग का? वो गहरा अनुभव कहाँ है जिसमें हम शरीर की दुनिया ही भूल जाए, 1-2 घंटा बीत जाए, टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस, ईगोलेसनेस ये आ जाए, समय थम जाए, वो अनुभव कहाँ है? ये भी कोई सेवा है? जिसको हम सेवा कर रहे हैं वो तो बस अहंकार का विस्तार था, मैंने किया, जुड़ा हुआ है उससे, मैंने ये भी किया, वो भी किया, ऐसे भी किया, वैसे भी किया। एक्सप्लोर एवरीथिंग अन्यू। अगला, सुनना जिनके श्रवण समुद्र समाना। तुलसीदास ने लिखा है कि ये राम कथा सागर की तरह है, ये वही समझ सकते हैं जिनके कान सागर की तरह, इतने विशाल, कहां पर भी राम कथा चल रही हो वो सुन सके, कहां पर भी परमात्मा वाणी हो वो सुन सके। हर चीज में ज्ञान ढूंढना है, हर चीज में, किससे मुझे क्या, जीवन में ये घटना हुई ये मुझे क्या सिखाती है, कुछ तो सिखा रही है ना, प्रत्येक घटना कुछ ना कुछ सिखा रही है। जो धोखा मिला, जो हमने अपराध किए, पाप किए, गलतियां की, जो पैर फिसल गया, काई है ना, मैं क्या सीखा। कल हम योग कर रहे थे, एक संकल्प आया कि हर जैसे शरीर क्षण भंगुर है वो तो पता है, पर ड्रामा का प्रत्येक सीन भी क्षण भंगुर है, इसलिए क्या चिंतन करूं उसका। सुबह जो हुआ वो तो गया, उसके बाद जो हुआ वो गया, अब ये क्लास हुई ये गया, इसके बाद में मुझे क्या लेना देना। आप अपने मार्ग में, अपने मार्ग, कोई कहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उस बहुत अच्छा से मुझे क्या फायदा, मैं तो और ही अहंकार से भर गया, तो और ही विकार आ गया मेरे अंदर। अगला, इम्बाइब धारण करना। अगला, जर्नलिंग लिखना, स्टार्ट राइटिंग, अपनी डायरी लिखो, दिनचर्या लिखो, पूरे दिन भर क्या हुआ लिखो, रात को 10 बजे लिख रहे, 10 बजे पांडव भवन, बाबा आज ये हुआ, गुड नाइट, लास्ट। तो ये बाद में भी काम आएगा कि हमारे मधुमन के लिखे हुए नोट्स है, उसमें पावर है। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल नीचे, एकाग्र। स्थिर आंखें बंद और आंखों के सामने देखेंगे बहता हुआ झरना, अविरल धाराएं बह रही है, प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ, ऊंची चट्टानों से एक झरना नीचे गिरता हुआ। क्या आपने कभी जीवन में कोई झरना देखा हो, विशाल झरना, उस झरने को, उस निर्झर को, उस वॉटरफॉल को आंखों के सामने लाना है। प्रतिपल नया है, निरंतर कार्यरत है, शुद्ध है, पावन है, संगीतमय है। और उस झरने को हाथ लगाना है और धीरे धीरे उस झरने के बीच में प्रवेश करना है। चारों तरफ अस्तित्व अपना सौंदर्य बिखेर रहा है, प्राण ऊर्जा सर्वव्यापी, मेरा रोम रोम अंग अंग गीला हो रहा है, और अब अनुभव करो कि ऐसा ही ज्ञान का झरना मुझ पर पड़ रहा है। भीतर के सारे विकार, सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, स्वभाव, अतीत भस्म हो रहा है। अंग अंग में, रोम रोम में, एक अद्भुत सुगंध। यह धारा मुझ में समा रही है, ज्ञान की धारा। प्रभु प्रेम की धारा, वैराग्य की धारा, तप की धारा, योग की धारा, शक्ति धारा, गुण धारा, तपश्चर्या की धारा, मेरा अंग अंग पावन हो चुका है। आंखों के सामने अब देखेंगे अव्यक्त मुरलिया, लाइट का जैसे प्रकाश, सारा ज्ञान मुझ में समा रहा है। मैं फील कर रहा हूं उस किताब को, उस साकार मुरली को हाथ लगा रहा हूं। सुखद स्पर्श, ज्ञान का अध्ययन, यह ज्ञान कंठ हो रहा है। चिंतन, चर्चा, रमणीकता, स्वरूप, गहराई सुन रहा हूं, धारण कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ज्ञान के नए संस्कार बन रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश जीवन के सभी अंधकार को मिटा रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने रहने का स्थान लाएंगे, वो सेंटर, वो आंगन, हर एक कमरा, वो घर, वो ऑफिस, और सोचो मैं वहां से चल रहा हूं। एक ज्योतिर्मयी फरिश्ता, सारा घर, सारे फर्नीचर, बर्तन, दीवारें पावन हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन पर ज्ञान की वर्षा, प्रकाश की वर्षा, पहुंचेंगे शांति स्तंभ। शक्ति प्रकंपन के रूप में मुझ में समा रही है। हिस्ट्री हॉल। सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर। बाबा का कमरा, दिव्य ऊर्जा का अनुभव। कुटिया, सोचो मैं बाबा की गोद में सो रहा हूं, जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में निश्चिंत सोता है। उसे कोई चिंता नहीं, गहरी नींद। सारी थकान निकल गई। आंखें खोलकर दिव्य ऊर्जा अपनी आंखों में भरनी है। बाप दादा की दृष्टि से मन में उठ रहा हर संकल्प मधुबन में उठ रहा हर संकल्प परमात्मा उपहार के रूप में स्वीकार करना है। पूर्ण समर्पण।